नाला तोड़ने वाला और पत्थर भी धारण करने वाला, बैल पर चढ़ने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला, इससे शादी नहीं करना। किंतु नारद जी ने जैसे सती को कहा था, उन्होंने वर्ण कर दिया था, वो इधर से उधर नहीं हुई। अंत में शंकर जी की उनसे शादी हुई। शादी होने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, शादी होने के कुछ दिनों के बाद में ससुर और जमाता में कुछ विवाद लग गया और उस विवाद में इतना हुआ कि सती को भी अपना यह शरीर त्याग करना पड़ा। महाराज जी, क्यों ऐसा हुआ? वो बड़ी पवित्र थी और उनमें कोई भी दोष नहीं था। शंकर जी तो निर्गुण तत्व है, उनसे उनका कोई भी शत्रु नहीं है। फिर उनको ऐसा अपने ससुर के साथ में क्यों हुआ? आप यदि इन कथाओं का संबंध भगवान के साथ में है तब तो कहिए, और इन सब लीलाओं का संबंध भगवान से नहीं है तो हमको सुनने की जरूरत है, वो सुन करके क्या? इसलिए जो कथा भगवान के संबंध में हो वो तो ठीक है, उसके समय से कल्याण होता है। किंतु जिन कथाओं से भगवान की लीलाओं का भगवान से कोई भी संबंध नहीं है, वो जितनी मधुर हो, आकर्षित हो, सब कुछ हो, उससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तब उन्होंने आरंभ किया जी कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत में केवल भागवत पुराण में जो वर्णन किए गए हैं वो पहले ही मैंने बतलाया है कि समस्त वेद, उपनिषद, पुराण सबका अनुसार है। कहीं पर वो चीजों को, तथ्यों को संक्षेप में बतलाया गया और कहीं पर उसको विस्तृत रूप में बतलाया गया। विशेष करके जिन कथाओं का भगवान से संबंधित है उसमें इसका वर्णन किया गया। सती जी अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी जल में, इसकी पृष्ठभूमि में क्या चीज है ये देखना है। भगवत भजन में गुरु की निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। जिनको गुरु में निष्ठा नहीं है उनका परमार्थ कभी भी संभव नहीं है। यदि कोई भगवान को पाना चाहता है तो गुरु में निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। गुरु में निष्ठा ऐसे नहीं होगी चाहे कोई लाख उपाय करे, गुरु करने के पहले पूर्व जन्म के संस्कार से अथवा भगवान की विशेष कृपा से, विशेष कृपा जमीन किसी पर हो तब तो उसको शुद्ध गुरु मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और जब शुद्ध गुरु नहीं मिलेंगे तो उस गुरु के ऊपर में निष्ठा और विश्वास रह नहीं सकता। इसलिए किसी को शुद्ध गुरु मिले तो इसको समझो कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक व्यक्ति बाजार में एक छोटी सी हड्डियां खरीदने के लिए आता है, सौ भी दो पैसे की हड्डिया को बजाता है और बजा करके देखता है कि खन खन बज रही है या खन खन बज रही है। यदि खन खन बजी तो उसको छोड़ दिया, खन खन वाली को लेगा। ऐसे ही गुरु करना है जीवन में सबसे अधिक महत्व की बात। और जहां तहां सिर मुड़ा दिया, नवा दिया, ऐसा मत करो। विवाह के समय में जैसे हम वर को ढूंढते हैं और वर वाले कन्या को देखते हैं, दस बीस से अच्छी तरह से पूछ लेते हैं, जब मन भरता है तब फिर शादी हो, तब वो शादी एक जन्म तक चलती है। ऐसे गुरु करेंगे और कुछ देखा नहीं, जाना कहां गुरु कर लिया तो क्या होगा? यदि वो गुरु गुरु ठीक नहीं रहा, भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है, आदर्श व्यक्ति नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, चुपचाप है। गुरु ठीक नहीं है, पीछे से देखा गया जी तो बड़ा है, दुराचारी है, पीछे से उसने देखा ये बड़ा लोभी है और किसी को मक्का नहीं उधर मर, बड़ा दुराचारी है, लोभी है, अर्थ की लालसा है और बड़ा घमंडी है, देह में आत्मबुद्धि है, तो पीछे मन खराब हो जाएगा। तो फिर गुरु से और शिष्य से, चेला से और गुरु से लड़ाई हो जाएगी, फिर उसको छोड़ करके दूसरे के यहां जाएंगे, फिर तीसरे के यहां जाएंगे, उस गुरु को छोड़ेंगे, ऐसे दस गुरु को करेंगे, एक गुरु पर निष्ठा नहीं होगी, परमात्मा बिगड़ जाएगी। इसलिए गुरु करने के पहले ही अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुरु भगवान का खुद भजन करते हैं कि नहीं, देखो भगवान के नाम के प्रति गुरु जी की निष्ठा है कि नहीं। वो शिष्यों से केवल अर्थ ही चाहते हैं, न कि परमार्थ खुद देना चाहते हैं, अर्थ के प्रति उनको लोभ है कि नहीं। सबसे विशेष बात, शरीर में अत्यंत आसक्ति तो नहीं है, भोगी विलासी तो नहीं है, देह में आत्मबुद्धि तो नहीं है और वैष्णों के प्रति अपराधी तो नहीं है, वैष्णों की निंदा तो नहीं करते, भागवत में उनकी रुचि है कि नहीं। ये सब चीजों को शास्त्र में लिखा है कि एक वर्ष तक परीक्षा करे, गुरु करे शिष्य को और शिष्य करे गुरु का। जब परीक्षा ठीक हो जाए कि हाँ ये गुरु हैं, सब विषय में पारंगत हैं, वेद शास्त्र उपनिषद में ये पारंगत हैं और भगवान में इनकी अभिचला भक्ति है और भगवान की में अभिभूति है, हम पर ये कृपा करके हमारा ये संसार भी कर सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं, तो गुरु पर और नहीं। त्रिकुंड धारण करने वाले, हम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं कहने वाले, देह में अत्यंत आसक्त महाक्रोधी, गांधी, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, वृंदावन में, गोवर्धन में, कृष्ण की लीला स्थलियों में और कृष्ण में कोई रुचि उनकी नहीं है, ऊपर ही से देखाव की है। तो ऐसे उनको धूप से नमस्कार करके वैष्णव गुरु को करो, भक्त गुरु होना चाहिए। यदि गुरु भक्त नहीं है, शास्त्र भी ज्ञान में सब कुछ, ऐसे गुरु को मत करो, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शुद्ध रूप में देख सुन करके अपने सारे जीवन के लिए नहीं, कोटि कोटि जन्मों के लिए गुरु करना होगा। यदि ऐसा गुरु होगा तो हम कोटि जन्मों में जहां जहां जन्म ग्रहण करेंगे और सबको सब जन्मों में हमारे पास में पहुंच करके और हमारा कल्याण करके ही तो दम छोड़ेगा। और असद्गुरु होगा, गुरु ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, अपने भी जाएगा नरक में और गुरु को भी खींच ले जाएगा, दोनों बरेंगे। अनंत काल के लिए नरक का ठेका ले लेता है जो मैं इसी में रहूंगा। इसलिए समझ बूझ करके कोई वैष्णव भक्त शास्त्र ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को भी शुरू करना चाहिए, ऐसे तैसे नहीं, ये तो पीछे छोड़ देना पड़ता है। आजकल हम लोग बहुत देखते हैं ऐसे लोग भटकते भटकते न जाने कितने गुरु और कितने क्या करते हैं। ऐसा मत करो, गुरु के ऊपर में ऐसा जब गुरु हो जाए तो गुरु के ऊपर में संदेह मत करो। गुरु भगवत स्वरूप है, उनके ऊपर में यदि संदेह हुआ तो शास्त्र के ऊपर में संदेह हो जाएगा, फिर शास्त्र के ऊपर में संदेह हो जाएगा तो भगवान है कि नहीं ये संदेह हो जाएगा और अंत में नरक में जाएगा। इसी को इसमें दिखलाया गया पार्वती जी के, सती जी के इस उपाख्यान में कि एक समय की बात है, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दशरथ की आज्ञा से वनवास में पधारे। 14 वर्षों का वनवास था। उस वनवास में चित्रकूट होते हुए ये दंडकारण्य में पहुंचे। वहां पर शूर्पणखा एक कामुक स्त्री उनके पास में आई और उनको विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने पहले तो उसके साथ में कुछ दिलगी की, मेरी तो शादी है लक्ष्मण का, हमारा छोटा भाई शादी नहीं हुई है, उसी से शादी कर, उसकी स्त्री नहीं है, ये नहीं कहा विवाह नहीं है, मैं तो झूठ हो जाऊ। उन्होंने कहा इसके पास में स्त्री नहीं है, बड़ा सुंदर है, इससे शादी कर। लक्ष्मण जी के पास में गई तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे मैं दास हूं, यदि नौकरानी बननी चाहती है, दासी बननी चाहती है तो मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु दासी होना अच्छा नहीं। अरे हमारे पिताजी को 360 रानियां थी, किसी को कितने रानियां थी, हमारे बड़े भाई हैं, राज्य के अधिकारी हैं, वो यदि दो भी पत्नी रखें तो कोई हर्ज नहीं, ये तो हजारों पत्नियां रख सकते हैं। फिर उनके पास में गई, फिर उन्होंने लौटा दिया, इसी प्रकार से वो बिगड़ गई। तो सीता जी को खाने के लिए दौड़ी, ये रहेगी तो शादी नहीं हुई, बस खाने के लिए दौड़ी। रामचंद्र जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने सन्नाटा काट लिया। इसके बाद में आगे विरोध बढ़ गया, सीता जी को रावण ने हरा दिया। हरण कर लिया तो रामचंद्र जी अत्यंत विकल होकर के हाथी से हाथी से हाथी से आंखों से आंखों की गड़ी छटने लगे, बड़े विकल हो गए। पैरों से पूछते, आपने हमारी सीता को देखा? नदियों से पूछते, हमारी सीता को देखा? हिरणियों से पूछते, मेरी सीता को देखा? पेड़ पौधे सबसे गोदावरी से पूछने लगे, मेरी सीता को देखा? एकदम पागल हो गए। और उसी समय शंकर अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए कैलाश से पधारे दंडकारण्य। वो सर्वंतर ज्ञानी शंकर जी भी हैं, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो समझ गए हमारे प्रभु इस जगत में बड़ी सुंदर मनोहारी लीलाएं कर रहे हैं, चल करके देखना चाहिए। ठीक उसी समय में पहुंचे जब रामचंद्र जी अत्यंत विकल होकर के पशुओं से पक्षियों से पेड़ों से पूछ रहे हैं, हम मेरी सीता कहाँ? लक्ष्मण उनके पीछे पीछे हैं, कभी धैर्य धारण कराते हैं, कभी धैर्य धारण नहीं। इसी समय शंकर जी आए, देख करके उनके भी आंखों से आंसू फलने लग गए और उनको बहुत दूर से परिक्रमा की, रामचंद्र जी की लीला में कोई बाधा न आ जाए, इसलिए बहुत दूर से आड़ से झाड़ियों और पेड़ों की आड़ से उनकी परिक्रमा की चार बार और साष्टांग प्रणाम किया और आंखों से एक ब्रह्मांसू दे बड़ी। ओहो, आपकी ऐसी लीला इसमें तो ब्रह्मा इत्यादि तक भी हम लोग भी मोहित हो सकते हैं। इसके बाद में पार्वती जी, सती जी वहीं पर खड़ी थी, उनको कुछ विस्मय हुआ। उन्होंने शंकर जी से पूछा, प्रियतम आप तो हमारे गुरु भी हैं, हमारे पति भी हैं, पति से बढ़कर के हम आप मेरे गुरु भी हैं, इसलिए कृपा करके आप ये बताइए अभी आपने किसको प्रणाम किया? ये कामुक रामचंद्र जी को प्रणाम किया, दशरथ नंदन ये मनुष्य को प्रणाम किया, जो अज्ञानता से भरा है, जिसको ये पता नहीं है कि हमारी स्त्री कहाँ गई और अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सका, ऐसे दुर्बल और जो कुछ नहीं जानने वाला है, ऐसे राम को आपने प्रणाम किया अथवा किसको आपने प्रणाम किया? उन्होंने कहा कि मैंने ठीक ही प्रणाम किया है, मैंने समस्त ईश्वरों के ईश्वर अपने आराध्य देव सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान मैंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया, परब्रह्म को मैंने। उन्होंने कहा कि परब्रह्म कैसे हो गया? अरे इनको पता है ये राम ले गया इसको, और इसको पता नहीं ये पूछ रहा है सब, और इतना काम विलाप कर रहा है अपनी स्त्री के लिए, और उसकी इतनी शक्ति नहीं है, ये कैसे राम हो गया? पर ब्रह्म तो ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने जो कह दिया वो ठीक है, यदि तुमको शंका है तो परीक्षा करो गुरु के बात, यदि पहले गुरु देख लो ठीक है कि नहीं तब करो, और नहीं तो उसको भगवत स्वरूप समझो, उसके बातों में कोई भी अविश्वास मत रखो, वो जो कहते हैं वो ठीक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संदेहात्मा विनश्य, संदेह का जो रखता है गुरु के वचनों में, गुरु के प्रति संदेह रखता है, मैं जो जानता हूं गुरु जी नहीं जानता, अरे वो तो राम राम करते हैं और क्या जानते हैं, संसार का ये सब थोड़े जानते हैं, मैं इनसे बहुत पढ़ा लिखा हूं या अधिक जानता हूं अभिज्ञता, ऐसा खबरदार मत कर। उनको बड़ी अनुभूति होगी, वो इसलिए संदेह करने के साथ ही साथ में विनाश हो गया। शंकर जी ने देखा ये इसका विनाश हो ही गया, ये तो हमारे विश्वास बातों पर विश्वास नहीं कर सकी। उन्होंने कहा आप जो भगवान की इच्छा होगी ये कहना तुमको कहा जैसे यदि नहीं विश्वास है तो परीक्षा कर लो। ये ठीक है। शंकर जी एक बरगद के पेड़ के नीचे वहीं पर बैठ गए, भगवत चिंतन करने लगे, आंख बंद कर लिया। और इन्होंने सोचा कि मैं कैसे परीक्षा करूं। उन्होंने सोचा ये स्त्री के लिए ये पागल हो रहा है, इसलिए यदि मैं पिताजी का रूप धारण कर लूं तो देख करके ये पागल हो गया या दौड़ करके हमारे गले से लग जाएगा और तू मिल गई कहां थी ये सब पूछेगा। और यदि परब्रह्म हुआ तो हमको समझ लेगा कि ये मैं सती हूं और हमें माता के रूप में प्रणाम करेगा, इसी से परीक्षा हो जाएगी सहज। इसलिए झट सीता का वह रूप बनाया जो जिस समय वो उनको रावण हर ले गया, ठीक उसी रूप में वैसे ही कपड़े लगते सब कुछ वैसा बना करके उनके सामने में वो खड़ी। किंतु रामचंद्र जी को सीता जी के विरह में पागल थे, उनके तरफ में देखा नहीं, इधर वो इधर आ रहे हैं तो वो उधर चले जाते हैं। इस प्रकार से जब उधर गए रामचंद्र जी पेड़ों से पूछ रहे हैं तब फिर उधर से सामने, किंतु फिर भी नहीं गए। फिर उधर से उधर गई फिर सामने गई तो भी नहीं देखा। अंत में उनके सामने किसी प्रकार से एकदम सामने पहुंचे तो रामचंद्र जी ने कहा भगवती सती जी शंकर जी किधर गए, आप यहां पर भटक रही हैं, किस लिए भटक रहे हैं, मुझे ये कैसे जान गया कि मैं सती हूं। तो ये सती जी पर ओ शंकर जी ने जो कहा था वो ठीक। अब मैंने जो अपने गुरु और पति के ऊपर में जो विश्वास मैं दूर कर दिया, मुझे संदेह हो गया गुरु के ऊपर नहीं होना चाहिए, अब मेरी क्या स्थिति होगी, एकदम भय से कांप उठी और रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी को प्रणाम करके जो ही आंख खोला देखा क्या, जितने पेड़ पौधे हैं सब एकदम राम और सीता बन गए जोड़ी जुगल। जिधर देखती है वो उधर सीता राम, उधर 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 सब जगह सीता राम। ये अभी तक अकेला था, ये सीता कहां से आए, तब तो ये सर्वशक्तिमान है। अब उनका वो भी संदेह दूर हुआ, एक ही में उनको ये भी संदेह दूर करा सीता जी को अपने पास, और हमें भी जान गया ये इसलिए सर्वज्ञ है, इसलिए ये तो स्वयं परब्रह्म है। अब उनको जो विश्वास थे उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके जब आप खुली तो देखा क्या, वही राम हाथी थे हाथी थे कहा और लक्ष्मण जी उसके नीचे नीचे पीछे पीछे विलाप कर। अब तो डरी सहमी हुई कुछ लज्जित हुई कुछ दुखित होती है, शंकर जी के पास में बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने कहा परीक्षा कर ली, नाथ मैं क्या परीक्षा करूंगी, वो आप जो कहते हैं वही सत्य, मैंने कोई परीक्षा नहीं, अब झूठ भी दे गुरु के साथ में झूठ मत बोलो, उसे कोई भी झूठ बोल करके छिपा नहीं सकता, वो जान जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए खबरदार झूठ तो किसी के साथ में मत बोलो। किंतु किसी काम से जब झूठ बोलना भी पड़े कोई तो गुरु जी के साथ में कभी झूठ मत बोलो, वैष्णव के साथ में और गुरु के साथ में, जब झूठ बोला झूठ समेत देना पड़ जाएगा। याद रखो ये भागवत की बात है। अब उन्होंने तो छिपाया कर दिया जे मैंने तो कोई परीक्षा नहीं की। गुरु जी ने कहा सोचा शंकर जी ने ओह देखो इसने दूसरी गलती से वहां तो अब हमसे झूठ भी बोल रही है। तो उन्होंने ध्यान लगा दी इसने क्या किया, कौन सी परीक्षा, देखा जाए ये तो हमारी आराध्या देवी सीता बन गई, सीता का रूप तो सीता का रूप बनाई तो फिर मेरी भार्या तो अब रही नहीं, अब तो मेरी मैया हो गई, माता का रूप हो गया। अब इसे पति का और पत्नी का संबंध इसे नहीं रहेगा, ऐसा सोचकर उन्होंने प्रतिज्ञा की मनी मन में, अब इसको मैं माँ के रूप में सर्वत्र देखूंगा क्योंकि हमारी इष्ट देवी चाहिए। इतने में फूल की वर्षा हुई, देवताओं ने फूल की वर्षा की और बोले आकाशवाणी भी, अहो आपके समान जगत में ऐसा कोई कठोर प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है, वो आप ही के लिए संभव है, शंकर के लिए ये। ये डर गई सहमी, बोली कि अरे कौन सी इन्होंने प्रतिज्ञा की, प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा की? तो वो कुछ नहीं बोले, दो चार बार पूछी थी और कुछ बस मन में ऐसा कर दिया, आगे आगे चल पड़े पीछे। उनको फिर ये लग गया अब ये पत्नी के रूप में हमें अब ग्रहण नहीं कर, उनका भाव ही एक्सेप्टेंस ही बदल गया। जब आश्रम में पहुंची तो उनको सामने आश्रम दिया, पत्नी को देते हैं बाएं तरफ में आश्रम होता है, पति का दाहिने तरफ में, गुरु का सामने सामने होगा, गुरु को प्रणाम करेंगे सामने से, ठाकुर जी को करेंगे बाएं से। तो उन्होंने सामने उनको आसन दे दिया और माता के रूप में माता पिता को भी सामने रख दिया, इसलिए सामने उनको आसन। अब तो ये भय से एकदम काम और देख करके वो समाधिस्त हो गए और समाधि लगी अब एक दो दिन की नहीं, हजारों हजारों वर्षों की समाधि उनकी लगने लग गई। अब तो वो बड़ी शीतल हो गई, शरीर को नहीं रखना, इसे शंकर जी की कोई मैं सेवा नहीं अपने पति की कर सकूंगी और दूंगी, इसको बदलना है चोला, ऐसा समझ करके अब कोई बहाना ढूंढने लग गई कि शरीर को छोड़ करके दूसरा कोई मुझे शरीर मिले, तब शंकर जी से फिर विवाह हो और तब फिर कहीं जाकर के उनकी शोभा, ऐसा बहाना ढूंढ रही थी कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ में समस्त देवताओं की स्त्रियां दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा, इसके पहले की बात है, पहले की बात है। अब शुभानंद जी कहीं अन्यथा संक्षेप में मैं दो चार बतला देता, अब वो समय की बात है। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा भारी यज्ञ किया जिसमें देवता ऋषि गंधर्व और सब सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब लोग वहां पर उपस्थित। उस समय में ब्रह्मा जी और शंकर जी सभा के बीच में मूल आसन पर बैठे थे, दक्ष प्रजापति अपने को विश्व का सम्राट मानता था और शंकर जी को अपना जमाई पुत्र मानता था, इससे अभी कुछ नहीं। तो उस समय में वो दक्ष प्रजापति सूर्य के समान तेज होकर के खेल जी निकल रहा था और बड़ा विद्यमान होकर के सभा में पहुंचा, सब लोग खड़े हो गए और उसका अभिवादन किया और आसन के समीप ले आए और वो आते ही अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और तिरछी नजर से शंकर की तरफ में देखा जो ऐसे बैठे हुए आंख बंद किए हुए हैं और देखते ही वो जल सुन गया, जैसे ये बंदर का मुंह वाला, बंदर जैसी आंखें और मेरा कुछ भी स्वागत नहीं किया, इन सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। अरे बंदर को तो हमने, बंदर के आंख वाले को हमने अपनी सुंदर से सुंदर लड़की को अपने विवाह किया, मैं नहीं विवाह करना चाहता, इसकी मैया भी विवाह नहीं देगी। गले में रुंद माला पहनने वाला, त्रिकुंड धारण करने वाला, स्मशान की का राह भस्म धारण करने वाला, सप्तम अपवित्र रहने वाले को हमने नारद जी के कहने से, और ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी थे हमारे पिता, उन्होंने हमारा सब चौपट कर दिया, हमारी प्यारी लड़की को उनसे विवाह करा दिया, और आज ये घमंडी होकर के यहाँ पर बैठा है, उठता नहीं है और हमको प्रणाम नहीं करता है। ये हमारे सदाचार को, हमारे वेद शास्त्रों की मर्यादा और शास्त्रों को सब कुछ उसने भ्रष्ट कर दिया। ये ऐसा व्यक्ति ने कहा, इसका मुख देखना भी नहीं चाहिए। जाओ, मैं तुमको उठाया पानी और साथ से जनेऊ लगा करके, कल मैं आज इसको अभी संपात करता हूं कि आज से इसको इंद्र और उपेंद्र के साथ में कभी भी यज्ञ का भाग न मिले। वही यज्ञ का भाग ही बड़ा योग्य है, भगवत भक्ति कोई बड़ी चीज नहीं। और ऐसे कह करके प्राकोदित होकर के और अभी संपात देकर के वहां से वो जाने लगा। इतने में शंकर जी के जो ये थे बृहस्पत्र जी ने बैल जो है नंदी वो वैष्णव है, उन्होंने देखा जी सभा में इसका अपमान किया शंकर जी का, उनको क्रोध हो गया। उन्होंने कहा कि सारी शंकर जी को इसने अब संपात कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो सभा सदों, आप लोग मेरी प्रार्थना सुने, ये बकरे जैसा व्यक्ति सब समय स्त्री और बच्चों में ही लगने वाला, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, शरीर में आत्मबुद्धि है, इसी को समझता है कि मैं हूं, ठीक इसकी बुद्धि बकरे की है, सब समय स्त्री कामी सब उसको छोड़ करके नहीं रह सकता। ये दुर्बुद्धि आज विश्व में सब जगह सम रहने वाले शंकर जी जो निर्गुण है, सब भगवान के परम भक्त हैं, से इनको भी संपात कर दिया। जाओ, मैं इसको अभी संपात करता हूं, जाओ तुम्हारा मुंड बकरे का हो जाए और तुम्हारा नाथ हो, और तुमको तुम्हारी जो सहायता करने वाले ये ऋषि लोग जो हैं, जो तुम्हारा भी संपात को सुन करके समर्थन किया, ये जो स्मार्ट ब्राह्मण है जो शंकर जी की अवहेलना करते हैं, इनको भी अपनी संपात किया। जाओ तुम लोग भी क्या करोगे, क्या संपात किया, जाओ तुम लोग भी कर्म कांड की रज्जुओं में तुम लोग बंधे रहोगे, वेद के पुष्प मधुपुष्पित वाक्यों में, कौन सा चतुर्मास्य का फल अक्षय होता है, इसलिए चतुर्मास्य करेगा, किंतु भगवान की भक्ति के लिए तुम नहीं करेगा, भागवत धर्म से तुम दूर हो जाएगा। और देखो एक बार शंकर का विरोध करने वाला, तुम लोग सुनो, जो त्रिपुंड धारण करने वाले, रुद्राक्ष की माला पहनने वाले, उनको हम ऐसे झूठ झूठ का भगवत धर्म का आचरण कर रहे थे, ब्राह्मण हो जो हजारों देवताओं की पूजा करते हो, तुम लोग अभी संपात देता हूं, कभी काल में तुम दरिद्र होकर के रहो, और जो तुम कुछ उपासना करोगे वो धन के लिए, पुत्र के लिए, प्रतिष्ठा के लिए तुम लोग करेगा, भगवान की भक्ति के लिए तुम लोग नहीं करेगा, ऐसा तुम लोग दरिद्र होकर के गृही लोगों के यहां तुम भटकेगा, ऐसे मानता हुआ सांस निपोरेगा, तुम्हारी विद्या बुद्धि सब कुछ विद्वान होगा, किंतु क्या करेगा, दो पैसे के लिए धनी घरों में जाकर के पीछा, तुम भागवत पाठ करेगा, किंतु पाठ करके क्या करेगा, अपने उद्धरण करने के लिए, घर के उद्धरण करने के लिए उनसे दक्षिणा लेकर के इस दक्षिणा से ही संतुष्ट हो जाएगा, उस भागवत से तुम भक्ति नहीं जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, कल काल में तुम लोग ऐसे ही दरिद्र होकर के विद्या बुद्धि पांडित कराने पर भी उसका उपयोग तुम लोग भगवत भक्ति के लिए। इतना सुनते ही सभा में फल बन गया। इसने भृगु जी देखा, अरे ये तो अभी संपात ब्राह्मणों को किया, किस ब्राह्मणों को किया, संकट के द्रोही है किंतु आत्म तत्वों को जानने वाले नहीं है, ऐसे लोगों को दिया जो कि समस्त देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को जो आत्मज्ञानी उनको दिया। इतने में भृगु जी सुन, देखो जो लोग शंकर की उपासना करें वो मदिरा का सेवन करें, मद्य का सेवन करें, उनका कोई कांड ज्ञान न रहे। जो लोग त्रिपुंड धारण करेंगे, रुद्राक्ष का माला लगाएंगे और शिव हम कहेंगे, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव, उनका एकदम भ्रष्ट हो जाए सब आचार विचार से शास्त्री विचार। इतना सुनते ही वो सभा बंद हो गई और सभी लोग दुखी मन से वहां से गए। इसके बाद में कुछ दिन चलने के बाद में फिर कैसे यज्ञ हुआ और सभी ने अपना कैसे प्राण प्रत्याग किया, और वो जो पहला संदेह था जो गुरु के प्रति संदेह किया, गुरु से झूठ बोला, उसका कहां तक फल जाता है, इसके शरीर को भी छोड़ना है। इसलिए हम लोग इस विषय से सावधान रहेंगे, गुरु करेंगे तो देख करके वैष्णव भक्त को करेंगे और बिना गुरु के बिन गुरु भगवत भी करे न हो, जो बिरंत ब्रह्म संकर्ष हो, ब्रह्म और संकर्ष के समान भी विद्वान और गुरु भी हो, बिना गुरु के भव सागर को नहीं पा सकता। मनुष्य शरीर पा करके, शासनों का संग पा करके, भगवान की कृपा पा करके जो भव सागर को नहीं तर गया है वो आत्मघाती व्यक्ति। इसलिए ऐसा ही गुरु करके भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा नहीं करने से हमारा असल ज्ञान। इस विषय में हमारे शिवानंद ब्रह्मचार्य जी आगे बताएंगे जो किस प्रकार से किया। हम यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। देख सुन करके गुरु करें, वैष्णव गुरु भक्त गुरु हो, विशेष करके मथुरा और वृंदावन में ये राधा कृष्ण की प्रधानता है, और ऐसे कैसे गुरु के पास मत जाएंगे। ज्ञानी भी हो जैसे भी हो, भक्त यदि पढ़ा लिखा भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, शास्त्र को नहीं भी जानता है, किंतु एकांतिक रूप में भगवान का भजन करता है, राधा कृष्ण का, तो वही गुरु होना चाहिए। समस्त
अभी आप लोगों ने पुरंजन उपाख्यान श्रवण किया, उन्होंने बतलाया फिर से आप उसको एक बार और श्रवण करें। संक्षिप्त श्रीमद् भागवत का ये प्रसिद्ध उपाख्यान है, इसको अच्छी तरह से समझने से किसी को माया नहीं पकड़ती। इसको समझने के लिए ये समझिए, कृष्ण ही जगत के परात्पर पुरुष हैं, जीव उनके अंश हैं, और अंश होने के नाते जितने भी विश्व ब्रह्मांड में जीव हैं वो सब प्रभु के अंश हैं और उनके सेवक हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जीव होते हैं जो माया को किन्होंने देखा ही नहीं, और ये बद्ध जीव, हम लोग का बद्ध जीव, हमने वैकुंठ को भगवान को प्रभु को नहीं देखा। हम लोग जब से हुए हैं तब से भगवान को भूले हुए हैं। इनमें से कोई साधु संग पा करके इन कथाओं को सुन करके भगवान का भजन करके भगवान के पास नहीं जाता है। तो जो लोग बद्ध जीव हैं उनके लिए ये बतलाते हैं, ये बद्ध जीव ही पूरा निजन है। पूरा निजन माने उनका मालिक राजा है। ये शरीर है इसमें 9 द्वार हैं, देख रही हैं आंखें 2, नाक 2 और मुंह और कान दोनों, ये हो गए 7 और नीचे के 2 पेशाब का रास्ता पैखाना का, ये 9 द्वार। आदमी मरता है तो इनमें से ही किसी न किसी रूप में प्राण निकलता है और उसे समझते हैं कि जिस द्वार से जाता है यदि यहाँ से फट करके गया तो वो बहुत अच्छा है, आंखों से भी गया तो ठीक है, मुख से भी गया है तो किसी तरह से ठीक है, नीचे के 2 द्वारों से जाने समझे कि वो नरक में गया, जहन्नम में गया। नहीं तो कभी कभी आंखें खुली रहती हैं। ये 9 द्वार का ये राजभवन है। जब भगवान को भूलते हैं तो जो बुलाने वाली बुद्धि होती है वही माया है, वही हमारी पुरंजन की स्त्री बनी है। जो जीव को चाहे अभी स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जीव हो चाहे जंतु हो सब में वही एक ही प्रकार के जीव हैं, भगवान के अंश के वक्त अभी भूले हुए हैं। ये बुद्धि मिल जाती है यही माया है। अब माया जैसे कहती है बुद्धि जैसे कहती है वैसे ही हम कहते हैं चलते हैं। इसमें एक 5 प्राण है, 5 प्राण ही वह सर्प है। जब तक यह रहता है तब तक मनुष्य जीवित है, जिस दिन प्राण निकल जाएगा बस मर गए। तो ये 5 प्राण उसकी रक्षा करता है, किसकी? बुद्धि की और पुरंजन की रक्षा करता है। इसके बाद में वो नगर में गया, इस शरीर में प्रवेश किया, बुद्धि भी उसकी आई। उसका एक मित्र है, मित्र का नाम है अज्ञात। अज्ञात माने क्या? कोई भी व्यक्ति हो यदि बुरा कर्म करता है तो भीतर से कोई भाव आता है ऐसा मत करो, अच्छे कामों के लिए पता है ऐसा करना अच्छा है, किंतु वो बुद्धि दुर्बुद्धि मनुष्य को त्रस्त कर देती है। इसलिए मनुष्य को जीव को बुद्धि की बात न सुन करके दुर्बुद्धि की, शास्त्रों की बात, गुरुजनों की बात, हमारे आचार्यों की बात को सुन करके निर्णय करना चाहिए ये कैसा। जैसे भागवत शास्त्र हैं, जैसे कि नारद हैं, व्यास हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के ये सब फॉलोअर्स हैं, ये लोग जैसा करते हैं वैसे उनकी बात सुनेंगे, बुद्धि की बिगड़ी हुई बुद्धि की बात नहीं सुनेंगे। यदि बुद्धि के बात सुनेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। इस बुद्धि से रम जाना ही उसके साथ में दीवार है। इसके बाद इसके लड़के इत्यादि होने लगते हैं। 11 इंद्रियां हैं, ये उसकी मित्र हैं, सखा हैं, जो उसको सहायता करते हैं, विषयों को भोगों को ले आते हैं। इसके बाद में आदमी जब 50 वर्ष के बाद में वृद्ध होने लगता है तो यही काल कन्या है। कोई नहीं चाहता कि मैं वृद्ध हो जाऊं, मैं कुरूप हो जाऊं, मुझे रोग घेर ले, किंतु वृद्धावस्था आएगी तो होगा जरूर। उसमें अकेले नहीं आती, बहुत से सेवकों को लेकर के वहां पर उपस्थित होती है और उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके 9 द्वारों को घेर लेती है और वो क्रमशः जड़ विद्ध होता चला जाता है। इसके बाद में फिर वो धीरे धीरे युद्ध करते 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 100 वर्ष की आयु में अंत में इसके जितने पुरंजन के ये सब थे सब परास्त हो जाते हैं और वो जरा व्याधि और वृद्धावस्था उसको जकड़ करके और उसे मार डालती है, शरीर से वो प्राण निकल जाता है। अब वो जैसा मरने के समय में चिंतन करता है व्यक्ति,
ठीक वैसे ही दूसरा जन्म होता है। जैसे भरत जी मरे हिरण की चिंता कर सकते हिरण हुए, हम लोग वैसे ही यदि दूसरों की प्रति हिंसा की चिंता करके मरेंगे तो बाघ अथवा सांप हो, यदि अत्यंत कामी होकर के मरेंगे तो बकरा भेड़ और ऐसे सब जन्म देंगे। जो जैसा चिंता करेगा वैसा ही होगा, और उस जन्म में भी नहीं सुधरा, वो जो अज्ञात बंधु है उसको परामर्श देता है कि तुम संतों का संग करो, भगवान का भजन करो, यदि उसकी बात सुना तो चिंतन करते 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 किसी भक्त के घर में जन्म हो जाएगा और उनके संग से धीरे धीरे भजन करते हुए अंत में सुख भी आएगी और भजन करते करते भगवान के चरणों में पहुंच। यही जीव की गति है। जो लोग इस मनुष्य को पा करके जन्म साधु संगों का उपकार नहीं लेते, उनका संग में भजन नहीं करते, अंत में उनको फिर से संसार के चक्र में आवागमन में आना पड़ता है। यही पूर्ण जन्म उपाख्यान का ये सार। आप लोग भी ऐसे ही भजन पंचाकल।
राधाकुंदम गिरिवर महोराधिका माधुवासम यस्य प्रत्यकृतया श्रीगुरुं सन्मुखो पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे